میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے۔ مسلم شریف میں کچھ یوں ہے کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، چٹاگانگ میں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے اس میں آپ جمع ہوئے ہیں، آج ہم جھوٹ اور سچ کے تعلق سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ سچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ ایک دن انسان کو پھنسا دیتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں بڑھ گئی ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے لوگ، جیسے فلمیں دیکھنے میں ڈرتے نہیں ہیں، گانے باجے سننے میں ڈرتے نہیں ہیں، بد نگاہی کرنے میں نہیں ڈرتے، اسی طرح ایک اور پرابلم ہے کہ آپ مطلب ہم جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمیں ابھارا جاتا ہے، بول دینا نا یار، بول دینا نا، نکل جائیں گے۔ اسپیشلی جب پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، لائسنس وہ گھر بھول گیا، الگ گھر نہیں بھولے ہے ہی نہیں، بھولیں گے کہاں، ڈاکیومینٹ تھے تو صحیح، پھر اس کے سامنے ڈرامہ بازی کریں گے، وہ معافی چاہتا ہو بس، وہ دوست کو گاڑی دی تھی اس کے پاس رہ گئے۔ ڈرتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹ بولیں گے تو اللہ نہ کرے، بس اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا قیامت کے دن، اور ہم اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سب پتہ نہیں ہے پولیس والے کو، یہ آپ پہلے آدمی تھوڑی ملے تھے، اس سے پہلے کہ لوگ جھوٹ بول بول کے نکل گئے، اس کو تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کئیوں کو پتہ ہے۔ اسی طرح آفس میں لیٹ جائیں گے جھوٹ بول دیں گے، لیٹ ہو گئے آپ کیا کریں، ماں بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، فلاں بیمار تھا، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، بھیڑ میں پھنس گیا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے کہ آنکھ لیٹ کھلی تھی، دیر سے اٹھا تھا، دیر سے نکلا تھا، دیر سے پہنچا ہوں، یہ سیدھی سی بات تھی، لیکن ہمیں جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے۔ یعنی میں جو آج آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جھوٹ بولنے میں جھجک ہی نہیں ہے، مال بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیا، कहीं लेट पहुंचे तो झूठ बोल दिया, अम्मी अबू ने पूछा कहाँ रह गए थे झूठ बोल देंगे, बीवी पूछेगी कहाँ रह गए तो झूठ बोल देंगे, बीवी को शोर पूछे क्या कर रही थी तो वो झूठ बोल देगी। अरे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने में कोई आसरा ही नहीं है, कि झूठ भी कोई गुनाह है, झूठ का कोई अजाब है, झूठ की वजह से मैं अल्लाह पाक के नजदीक झूठा लिख दिया जाऊंगा। और बास तो ऐसे झूठे होते हैं बदकिस्मती के साथ कि इनकी सच बात पर भी भरोसा करने का दिल नहीं करता, उनका झूठ ही मशहूर हो जाता है, यार ये आदमी झूठा है, ये झूठ ही बोलता है, जब देखो गलत बयानी करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपके सामने जो मैंने हदीस सुनाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस भी सुनाई और मैंने बुखारी शरीफ की हदीस भी सुनाई है, दोनों हदीसों में सच की फजीलत है और झूठ की तबाही है, कि सच ये जन्नत की तरफ लेके जाता है और झूठ ये जहन्नम की तरफ लेके जाता है। अगर एक मुसलमान को पूछे कि तुम्हें जन्नत में जाना है कि जहन्नम में, तो डेफिनेटली मुसलमान ने ये कहना है जन्नत में जाना है। मुसलमान को पता है कि जहन्नम किस कदर होलनाक और किस कदर भयानक मकाम है, वह किस कदर अजाब है। हमें डराया जा रहा है कि देखो तुम झूठ बोलोगे तुम्हें झूठ जहन्नम में ले जाएगा, मगर हम डरते नहीं है, हम समझते कि झूठ बोलेंगे तो हम निकल जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, झूठ बोल के बंदा निकलता नहीं है, फंस जाता है, झूठे का हफ्जा भी नहीं होता, उसे दो बार पूछो तो तीसरी बार में भी इसकी बात दूसरी होती, क्योंकि उसे सच बात बताई नहीं थी, वो तो हर बात गढ़ के बयान करता है, वो तो कहानी सुनाता है, अफसाना सुनाता है। उसको तीसरी बार पूछो क्या हुआ था तो वो पहले अपने आप से बात करेगा, मैंने शुरू में दो दफा क्या कहा था, उसको याद आएगा तो वो तीसरी बार सही बोलेगा, वरना तीनों बार उसकी बात गलत होती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक आपको और मुझे सच बोलने की आदत अता फरमाए, और हम सच ही बोलते रहे, सच ही बोलते रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मेरे रब ने चाह तो अल्लाह पाक के नजदीक हम सिद्दीक लिख दिए जाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि झूठ की आदत हमें अल्लाह पाक के नजदीक कज्जाब लिख दे, सबसे बड़ा झूठा। किस कदर ये खौफनाक बात मैंने आपसे की है। हदीस में जो आया, अगर अल्लाह के थाने में लिख दिया जाए कि यह आदमी ब्लैक लिस्ट है, अब मुझे बताइए क्या हाल होगा। एयरपोर्ट पे लिख दिया जाए कि यह आदमी ब्लैक लिस्ट है, आपके डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाए यह आदमी ब्लैक लिस्ट है, खानदान में लिख दिया जाए यह आदमी ब्लैक लिस्ट है, कितना डर लगता है कि यार मैं बदनाम हो जाऊंगा। अल्लाह पाक के नजदीक जो कज्जाब लिख दिया जाए, झूठा लिख दिया जाए, सबसे बड़ा झूठा, किस कदर उसके लिए तबाही है। अल्लाह पाक आपको और मुझे सच बोलने की आदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा दो शख्स मेरे पास आकर कहने लगे कि जिस शख्स को आपने शबे मेरा देखा कि उसके जबड़े चीरे जा रहे थे, उसके जबड़े चीरे जा रहे हैं, वो बहुत झूठा आदमी है, ऐसी बेपर की उड़ाता है, यानी इतनी झूठी और गलत बातें वो उड़ाता है कि इसका झूठ अतराफ आलम में फैल जाता है, सारी दुनिया में उसका झूठ फैल जाता है, बस कयामत तक उसके साथ यही किया जाता रहेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं एक आपको मशवरा देता हूं, जितने भी इस्लामी भाई यहां मौजूद हैं और जो मदनी चैनल पर मौजूद हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, उंगली हाथ डालें या उंगली डालें, हाथ डालें कोई नहीं डालें, और खींचे, थोड़ा खींचे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब सोचिए कि जब झूठे शख्स को यहां से पकड़कर इसका जबड़ा खींचकर गुद्दी तक लाया जाएगा, और फिर यहां से खींचकर गुद्दी तक लाया जाएगा, यहां तक सही हो जाए, अब बताइए कि यह सजा कितनी बड़ी है। ये झूठे का अंजाम है कि उसका जबड़ा खींचा जाएगा, इतनी तकलीफ होगी और अजाब इलाही। अच्छा, अब हदीसे पाक में आएगा, बेपर की उड़ाता है, ऐसे ही उड़ा देता है, यानी बेपर की उड़ाना, परिंदा पड़ पर उड़ता है ना, बगैर पड़ के क्या उड़ेगा, यानी ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, झूठी बात उड़ा देते हैं। और ये आज सोशल मीडिया के दौर में ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है, आज कई ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशन ही यही है, झूठी बातों का काम कर देना, फैला देंगे, वायरल कर देंगे, सोशल पेज पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, अपने सोशल दीगर पेजेस पे वो डाल देंगे, और ऐसी झूठी बात डाल देंगे, आदमी फंस जाता है, लोगों को बदनाम करते हैं, इज्जतों से खेलते हैं, या फिर ऐसी बातों को बिगैर तस्दीक के आगे बढ़ा देते हैं। तो सुनिए, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफी है, सुनी सुनाई बात आगे कर दे, बिगैर तहकीक के हम बात आगे कर देते हैं। हमें एक पोस्ट आती है, उस पोस्ट किसी के बारे में लिखा होता है और हम आगे बढ़ा देते हैं, अभी इतना आम हो गया ये, इतना आम हो गया, कुछ समझ ही नहीं आती कि इसको काबू कैसे करें सोशल मीडिया को। तो हमें समझ ही नहीं पड़ती, हम माशाल्लाह में लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गुनाह है। अरे अब गुनाह की बात आगे बढ़ा रहे हैं, गुनाह की बात अब आगे फैला रहे हैं, आपको इतनी समझ ना आई कि यार ये बात मुझे आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके हाथ में एक मोबाइल है और आपके हाथ में पोस्ट आती है मोबाइल पर जिसमें आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है और आपके नाम के आगे लिखा है ये शब्द बहुत बुरा आदमी, ये पैसे खा जाता है। हो आप ये बताएंगे इसको आप आगे बढ़ाएंगे कि वही दबाएंगे? अगर सच है तभी दबा देंगे, झूठ है तो अफसोस जरूर होगा मगर दबाए नहीं कि मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाना, क्या आप आगे बढ़ा देंगे? मोमिन वो ही जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। आप अपने लिए तो ये पसंद करते मैं बदनाम ना हो जाऊं, मैं रुस्वा ना हो जाऊं, मेरी बात मार्केट में आ ना जाए, मैं मतलब जलील ख्वार ना हो जाऊं, लोग मुझे बुरा ना कहें। और दुनिया भर की बातें हम जब अपने मोबाइल के जरिए दुनिया भर में आम कर रहे होते हैं, माशाल्लाह सुमा माशाल्लाह, बाज लोग तो हदीसें कर देते हैं, झूठी हदीसें कर देते हैं, नीचे लिख देंगे बुखारी। अरे भाई कहां था बुखारी में ये, तो हम भी नीचे देखते बुखारी लिखा हुआ है, हम भी लिखते थे नीचे, हम भी देखते मुस्लिम लिखा हुआ है, हम भी देखते फना का कौन लिखा हुआ है, तस्दीक हमारे पास नहीं होती। तो आप कहेंगे यार तस्दीक कैसे करें? आप देखिए आया कहां से, जरिया कौन सा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, दावत इस्लामी के पेज से एक चीज आती है, पूरी तफ्तीश के बाद आती है, किताबों की तहकीक के बाद आती है, जुमा जुमा मदनी फूल आते हैं, इसके अलावा हमारे दावत इस्लामी के जो सोशल पेजेस है उस पर मदनी फूल आते रहते हैं, हदीसें आती है, कवाल आते हैं, वीडियोज आती है, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि हदीस गलत तो नहीं आ गई है, ये इरशाद गलत तो नहीं है, इसकी तस्दीक होती है, उसके बाद वायरल किया जाता है। अब आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिकेट है, इतनी वो मतलब वेरीफाइड है, क्या आप उसको आगे बढ़ा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मैंने आगे क्या बढ़ा दिया, क्योंकि इंशाल्लाह वहां गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। लेकिन अब जिसकी पोस्ट आप जानते भी नहीं है कि है कौन भेजने वाला, ये मुसलमान भी है या नहीं है, किसी को भी नहीं जानते, और आप धार करके पोस्ट आगे बढ़ा देते, किसी की बच्ची बदनाम हो गई, किसी का भाई बदनाम हो गया, किसी का बेटा बदनाम हो गया, किसी की बीवी बदनाम हो गई, किसी का कारोबार तबाह हो गया, आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ा, आपने तो उसकी पोस्ट आगे बढ़ा दी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने ये काम किया होता सबसे पहले वो बेपर की उड़ाता है और लाता है कि लोग उसको फिर वायरल भी करते थे। ये वायरल तो मैंने आज की मिसाल दी आपको, वरना सुनी सुनाई बात आगे कर देने का तो रुझान पुराना है, नया थोड़ी है, मगर वो क्या 10-15-20-50-100 तक बात जाती थी, आपको एहसास हुआ आपने जाकर 25-50-100 कर कह दिया। मुझे याद है आज से कुछ अरसे पहले, शायद 20 साल पहले की बात है, एक इस्लामी भाई को किसी के बारे में गलतफहमी हो गई थी, किसी शख्स के बारे में उसे गलतफहमी हो गई थी। तो उन्होंने उस वक्त व्हाट्सएप का दौर शायद नहीं था, एसएमएस का दौर था ना, पहले एसएमएस होते थे मोबाइल पर, व्हाट्सएप तो था नहीं, हम एसएमएस के जरिए मैसेज आगे भेजा करते थे। तो उन्होंने एसएमएस के जरिए लिख दिया कि फला फला शख्स के बारे में मेरा यही जहन है। थोड़े दिनों के बाद दोबारा मैंने उसका एसएमएस पढ़ा और जितनों को उन्होंने एसएमएस किया था सबको एसएमएस किया कि मैंने जो इससे पहले ये वाला एसएमएस तो किया था कि फला शख्स के बारे में मेरा ये जहन है, फला शख्स ऐसा है, मेरी गलतफहमी थी, मैं मिसगाइड हो गया था, ऐसा नहीं है, ये फला फला ऐसा शख्स है, मैं इन्हीं का मतलब इनके साथ उन्होंने अपना एक जो कंसर्न था वो इन्होंने कायम करने की बात की। यानी जितनों तक इन्होंने बात पहुंचाई थी इनके ख्याल में कि मेरा एसएमएस यहां तक गया होगा, उन्होंने कोशिश की कि इतनों तक बात पहुंचा दे कि मेरी ये बात गलत थी, सही बात ये जो मैंने अभी की है। अभी ये एक मिसाल मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको बयान कर दी। अभी हम करते क्या भाई, ये अच्छा गलत पोस्ट थी, झूठी थी, ओए ओए ओए, अच्छा चलो आगे एहतियात करेगा। अरे खुदा के बंदो एहतियात करेंगे, सही बात है, मगर ये जो आगे बढ़ा दी इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये जो अल्लाह ना करे झूठ चलता रहेगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हमें झूठ की आफत से महफूज फरमाए और हमें सच बोलने की अल्लाह पाक आदत अता फरमाए कि सच बोलने की बड़ी फजीलत है, झूठ तर्क करने की, झूठ छोड़ देने की भी बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे और वो बातिल है, यानी छोड़ने की चीज है, झूठ है ही छोड़ने की चीज, जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे इसके लिए जन्नत के किनारे में मकान बनाया जाएगा। झूठ बोलना छोड़, झूठ दे, कुछ भी हो जाए, झूठ झूठ बोल के बंदा फंस जाता। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात थी, एग्जामिनेशन हो रहे थे तो बड़ा लोड था, छुट्टियां वुट्टियां बहुत हो गई थी, तो बोर्ड ने फैसला किया कि इतवार को भी पेपर लिया जाएगा, चलो भाई संडे को भी पेपर लिया जाएगा। तो संडे को भी एग्जामिनेशन हॉल था, एक स्टूडेंट 8 बजे पेपर था, वो 9 बजे पहुंचा। तो जैसे ही स्टूडेंट 9 बजे पहुंचा तो वो फौरन आकर क्लास में दाखिल होने लगा कि सप्लीमेंट्री पेपर उठाओ और मैं पेपर देना शुरू करूं। तो उसको सर ने कहा, भाई कहाँ हो, 8 बजे का टाइम था, 9 बज रहे, किधर रह गए थे, टाइम खत्म हो गया। उसने कहा, सर मेरी आंख नहीं खुली थी, मैं लेट हो गया, प्लीज सर। क्या कहा उसने? सर मेरी आंख नहीं खुली थी, मैं लेट हो गया, मैं देर से मेरी आंख खुली, सॉरी सर, प्लीज मुझे जाने दें। सर ने देखा कि यार ये लड़का सच बोल रहा है, कहा ठीक है जाओ पेपर पर। थोड़ी देर के बाद एक और लड़का दौड़ा दौड़ा आया, उससे भी कॉपी उठाई। सर ने पूछा, भाई कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? सर पेपर, बेटा घड़ी देखी है, 9:15 हो रहे हैं, लेट हो गए आप। कहा सर बस वो इतना ट्रैफिक था, सर इतना ट्रैफिक था, रास्ते में मैं फंस गया सर, मोटरसाइकिल कहाँ लेकर चलूं? सर ने कहा, अच्छा बेटा बहुत ट्रैफिक था, बेटा पता है आज संडे है, अब तो छुट्टी है। अरे हाँ सर, ओ सर वो पंचर हो गई थी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। अच्छा बेटा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, बेटा अब जा तू भी पंचर हो जा। उसको फारिग कर दिया, सच ने उसको बैठा दिया, झूठ ने उसको फारिग करवा दिया। वो झूठा बहाना बनाता था, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के आगे भी झूठ ना बोले। अगर अम्मी अबू पूछते कहां रह गए तो बता दे मैं यहां चला गया था, झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। आप ऑफिस में लेट हो गए, सच बता दे, मां को मार दिया, पता नहीं एक बार मां को मारेंगे, फिर दूसरी बार मां का तीजा कराएंगे, फिर एक बार खाला का इंतकाल कराएंगे, फिर बेचारी बूढ़ी नानी 2 दफा मार दी थी, अब यही नहीं पता चला कि नानी का पहले मैंने इंतकाल का बोला था कि दादी का बोला था। तो वो तो सर को याद था कि सर वो दादी का इंतकाल, बोला पिछले हफ्ते तो बेटा दादी का इंतकाल हुआ था, नहीं सर वो नानी का इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, अरे बीमार कर देंगे, मां बीमार कर देंगे, बीवी बीमार कर देंगे, अपना पेट खराब कर देंगे, अपना दिमाग खराब कर देंगे, ये सारे मसाइल हो गए। अब ये भी ऑफिस से पता चल जाता है कि यार ये आदमी झूठ बोलता है, जल्दी जाना है सर, जल्दी जाना है। क्यों जल्दी जाना है? सर वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अच्छा ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे आम है, लिख कर दे देंगे। बच्चा छुट्टी कर गया, 3 दिन 4 दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, मदरसे की छुट्टी हो गई, अब बच्चे ने कहा अम्मी को, अम्मी कारी साहब गुस्सा करेंगे, सर डांटेंगे, पनिशमेंट होगी, अम्मी भी लिख देगी, बच्चा 3 दिन से बुखार में था इसलिए इसकी मदद कबूल कर ली जाए। अरे माँ बच्चा बुखार में नहीं था, बीमार नहीं था, तुम क्यों बच्चे को सिखा रही हो कि बेटा अगर बचना है तो झूठ बोल दिया कर? ये ट्रेनिंग किसने की? माँ ने की, ट्रेनिंग बाप ने की। होमवर्क नहीं हुआ, माँ बाप से झूठी साइन ले ली, माँ बाप झूठी साइने करते हैं, खुद होमवर्क करके दे देंगे, उल्टी सीधी लाइने बना करके लगे कि ये बच्चे ने बनाया है। धोखा देना, झूठ बोलना, इस तरह की चीजों की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अपने बच्चों की। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, अगर आप सच का माहौल बनाना चाहते हैं तो मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमेशा सच बोलें और बच्चों को सच सिखाएं। अच्छा बच्चा बादों का बहुत छोटा सा बच्चा होता है, अल्लाह पाक मेरे अमीर सुन्नत को सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए। जब इनके आगे कोई छोटा बच्चा भी ऐसी बात करता है ना जो झूठी होती है, तो आप फौरन उसको टोकते हैं, बेटा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, है ना, उसको सच की तरबियत की जाती है। मैंने देखा मेरे सुन्नत देख रहे थे एक बच्चे को, वो बच्चा पौधे पर पानी डाल रहा था, पानी डालने की गुंजाइश थी नहीं, तो अभी इसमें फरमाया बेटा पानी अभी नहीं डालो, पानी डालने का टाइम ही नहीं है, तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं वो पौधे पर पानी डालना चाहिए। तो अमीर तो फरमा बेटा पौधे पर पानी डालने के लिए पानी नहीं डाल रहे हो, आप पानी इसलिए डाल रहे हो कि आपको मजा आ रहा है। आप सच बोलो कि मैं पानी मजे के लिए डाल रहा हूं ना कि पौधे के लिए डाल रहा हूं। अब मैं देख रहा था कितनी खूबसूरत तरबियत है ये, बात बजायर आपको छोटी नजर आएगी लेकिन इस बच्चे को आइंदा के लिए कैसा सबक मिल गया कि मैंने घुमा फिरा कर भी बात नहीं कर रही है, मैंने सीधी बात करनी है। ये होती है तरबियत और ये होता है बड़ों का काम कि बच्चा शुरू से समझ जाए कि मैंने ये बोलना है मैंने ये नहीं बोलना, मैंने ये करना है ये नहीं करना। तो अल्लाह पाक हमें सच बोलने की आदत अता कर दे। तो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, सच बोलेंगे इंशाअल्लाह और सच ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ रहो। अब सच बोलने की आदत बनाने के ताल्लुक से मैं यहां पर कुछ आपको मदनीपुर बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। इस आयत से नेक लोगों की सोहबत में बैठने का भी सबूत मिलता है क्योंकि इनके साथ होने की सूरत इनकी सोहबत इख्तियार करना भी है और इनकी सोहबत इख्तियार करने का एक असर यह होता है कि इनकी सीरत किरदार और अच्छे अमाल देकर खुद को भी गुनाहों से बचने और नेकियां करने की तौफीक मिल जाती है। तो ये सच लोग होते हैं, ये सच बोलते हैं। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं नेक बन जाऊं और सच बोलने की मेरी आदत आ जाए, उसका काम यह है कि वह अच्छी सोहबत इख्तियार कर ले, नेक लोगों के साथ रहे, सच्चों के साथ रहे। आपको पता है ये शख्स झूठ बोलता है, हमको जरूरत क्या है इसके साथ दोस्ती करने की, इसके साथ उठने बैठने की। अच्छा ये भी नहीं पता होता कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये नहीं होता। सच की तारीफ ये है कि खिलाफ वाकई, यानी जो बात नहीं हुई उसके खिलाफ बात करना, ये होता है झूठ। ये झूठ की तारीफ है, खिलाफ वाकई यानी जो वाकया हुआ ही नहीं है, जो बात हुई नहीं है उसके बारे में कह देना कि ऐसा हुआ है, ये इसको कहते हैं झूठ। अल्लाह पाक हमें झूठ की आफतों से बचाए और सच बोलने की आदत के लिए हमें सच्चों के साथ रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाएगी। अगर हम झूठों के साथ रहेंगे तो झूठ की आदत हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यार ये झूठ बोलते हैं इसके सिर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बच जाता है झूठ बोल बोल बोलकर। मगर हम ये नहीं जानते कि झूठ बोलकर आगे जाकर फंसेगा, दुनिया में भी फंस सकता है, कब्र में भी फंस सकता है, कयामत के दिन भी फंस सकता है। अच्छों की सोहबत, क्योंकि झूठों की सोहबत ने हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह करे मेरी ये बात आपकी समझ में आ जाए और आप इसको कबूल कर ले और अपने आस पास देखें कि मेरी सोहबत कैसी है, मेरी दोस्ती कैसी है, मैं उठता बैठता किसके साथ हूं। अच्छा बनने के लिए, सच्चा बनने के लिए, नेक बनने के लिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले। बेहतरीन फार्मूला है, शॉर्टकट है नेक बनने का, शॉर्टकट है यह। आप तिजारत करते हैं, हम नेक लोगों के साथ रहे, भाई तिजारत करने वाले सारे के सारे गंदे बुरे लोग तो नहीं है ना, आपके मेले में सारे के सारे तो बुरे लोग नहीं है, आपकी खानदान में आस में सारे के सारे बुरे लोग तो नहीं है। मसला यह है कि मैं जैसा हूं मुझे दोस्त भी वैसा मिल जाता है और यह फितरत भी है कि बंदा ऐसे से दोस्ती करता है जिससे उसकी मैचिंग हो जाती है। हर एक से दोस्ती क्या करता है, क्लास के अंदर 25-50 लड़के होते हैं, सबके साथ थोड़ी दोस्ती होती है, सबके तो नाम ही नहीं पता होता है, 2-5-10 लड़कों से दोस्ती हो जाती है क्योंकि अपनी मैचिंग हो जाती है, मेरे दिमाग का आदमी है, मेरे जहन का आदमी है, मेरी उसकी आदतें मिलती हैं। तो आदमी वैसे दोस्ती उसी से करता है जिससे आदतें मिलती है, कुछ ना कुछ मैचिंग होती है तभी दोस्ती होती है। आप देखिए कौवा कौवे के साथ ही रहेगा, कौवा कभी कबूतर के साथ नहीं होगा, कबूतर कबूतर के साथ ही रहता है, चिड़िया चिड़िया के साथ रहती है। ये आप देख ले, जो जो जानवर होता है वो अपने जानवर के साथ रह रहा होता है, वो उसके साथ मैचिंग कर रही होती है। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि मैंने देखा कि एक दिन कौवा और कबूतर साथ उड़ रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि कौवा और कबूतर कैसे साथ उड़ रहे हैं। करीब जाकर देखा तो पता चला कि दोनों लंगड़े थे, तो इन दोनों के लंगड़ेपन ने दोनों को एक बना दिया कि दोनों को ये भी लंगड़ा मैं भी लंगड़ा, चल दोस्ती हो गई दोनों की। तो कोई एक चीज मैच कर गई, लंगड़ापन मैच कर गया। अब हम अगर सच्चे हैं मेरे प्यारे समय तो हमें सच्चों की दोस्ती अच्छी लगेगी, हमें ऐसों की दोस्ती अच्छी लगती है जो घुमावाता हुआ फिराता है, फिल्में दिखाता है, उल्टे सीधे खर्चे करता है, तफरी करवाता है, उल्टी सीधी जगहों पर ले जाता है, हम सकता है ये दोस्त अच्छा है, ऐसा नहीं है। हदीस पाक में दोस्त दोस्त के दीन पर होता है, देखो तो किससे दोस्ती कर रहे हो। और ये भी देखना होता है कि आपका दोस्त का उठना बैठना किसके साथ है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी दोस्ती किससे है, हमारी सोबत कौन सी है। हजरत सईद उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सईद उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सच्चे दोस्त तलाश करो और इनकी पनाह में जिंदगी गुजारो, क्योंकि वो खुशी की हालत में जीनत और आजमाइश के वक्त सामान है। और किसी गुनाहगार की सोबत इख्तियार ना करो वरना उससे गुनाह करना ही सीखोगे। इतनी खूबसूरत बात की है मेरे आका फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने। आखिर का जो जुमला था इस पर दोबारा गौर करें, किसी गुनाहगार की सोबत इख्तियार ना करो कि उसके साथ तुम गुनाह करना ही सीखोगे। बेनमाजी के साथ आप बैठेंगे तो बेनमाजी बनेंगे, फिल्में ड्रामे देखने वालों के साथ बैठेंगे तो फिल्में ड्रामे देखेंगे, बद निगाहियां करने वालों के साथ बैठेंगे तो बद निगाहियां करेंगे। ये होता है, माँ बाप के नाफरमानों के साथ बैठेंगे तो माँ बाप की नाफरमानियां करेंगे। आलिम के साथ उलमा अहले सुन्नत की सोहबत में बैठेंगे, आशिका ने रसूल उलमा अहले सुन्नत, आशिका ने साहबा, आशिका ने अहले बैत, आशिका ने औलिया, तो इंशाल्लाह वहां उसकी अपनी बरकतें मिलेंगी। ऐसे आशिका ने रसूल नेक लोगों के साथ मुबल्लिगीन के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। नेक आमाल का रिसाला पूर करने वालों के साथ बैठेंगे, मदनी काफलों के मुसाफरीन के साथ बैठेंगे, मस्जिद में आते जाते एक नेक इस्लामी भाई के साथ आपको उठना बैठना होगा तो इंशाल्लाह वो आपको अपने जैसा बनाएगा। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पांच किस्म के आदमियों की सोहबत इख्तियार ना करो, यानी पांच किस्म के ऐसे लोग हैं जिनके साथ तुमने नहीं उठना बैठना। नंबर एक, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम इससे धोखा खाओगे। नंबर दो, बेवकूफ आदमी, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा, वो तुम्हें नफा पहुंचाना जाएगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा, बेवकूफ शख्स। नंबर तीन, बखील शख्स, कंजूस, क्योंकि जब तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। अल्लाह पाक हमें सखी दोस्त अता करे, खुद भी सखावत करे। आपने देखा होगा बात, दोस्त ऐसे होते हैं जाओ क्या कर चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा। जब आप बिल पेमेंट करके बाहर निकलोगे, अरे बिल पेमेंट कर दिया, अरे मुझे कह देते यार, तुम्हें नहीं पता था बिल पेमेंट किया जाता है, मुफ्त में थोड़ी चाय थी ना, कभी पेट्रोल भरा कर देंगे ना, कभी ऑफर करेंगे खाने पीने के मामले में, घूमते फिरते रहो, बोले तुम ही खर्चा करो मैं कुछ नहीं करूंगा। अल्लाह सखावत अता करे, और सखावत अल्लाह और उसके रसूल के लिए, नफसानी नहीं। गुनाहों बड़े काम पे खर्च करने की भी अब आपको तरकीब नहीं दिला रहा, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करना। तो बखील की दोस्ती यानी कंजूस की दोस्ती अच्छी नहीं होती, इसकी सोबत से बचना है। नंबर चार, बुजदिल शख्स, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, बहादुर की दोस्ती रखो। और नंबर पांच, फासिक शख्स, क्योंकि वो तुम्हें एक लुकमे या इससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुकमे से कम क्या है, आपने इरशाद फरमाया लालच रखना और इसे ना पाना, यानी वो तुम्हें बेच देगा, वो फासिक गुनाहगार शख्स, तुम्हारा लिहाज ही नहीं रखता वो। अल्लाह पाक प्यारे साहब भैया सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इन इरशादात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगी संवर जाएगी, क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहन है, हर एक के लिए जरूरी है कि वो देखे कि मैं किसके साथ उठ रहा हूं किसके साथ बैठ रहा हूं। आप इस वक्त बैठे सोचे कि आपकी गैदरिंग कौन सी है, आपकी सोहबत कौन सी है, आप किनके साथ आते जाते हो। इवन के बचपन से ही अपने बच्चों पर नजर रखें कि आपका बच्चा किसके साथ उठता बैठता है। बालों का बच्चे की लैंग्वेज तब्दील हो जाती है, हम बोले यार ये बच्चा मेरे घर में तो ये लैंग्वेज नहीं है, मगर ये जहां बैठ रहा है उठ रहा है वहां उसकी लैंग्वेज तब्दील हो गई है। तो अभी से इसको कवर करें, और माँ बाप अपनी सोहबत दे बच्चों को और अपने पास रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, मदरसतुल मदीना है, बच्चों के मदरसतुल मदीना है, उसमें आप बच्चों को लेके जाए इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। अल्लाह करे कि यहां भी दारुल मदीना की ब्रांचेस खुलना शुरू हो जाए, स्कूलिंग सिस्टम यहां भी दावत इस्लामी का आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। या खूब मदारिसुल मदीना खोलने बच्चों के, एक एक शहर के अंदर سینکڑوں مدرسۃ المدینہ کھولنے تاکہ بچے قرآن پڑھ سکیں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ سکیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حفظ کریں گے. اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی ایک برکت یہ ہوتی ہے پیارے صاحب، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے. یہ بہترین طریقہ ہے. یہ امیر سنن کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے. یہ تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. علماء کی صحبت ہے، علماء عاشقان رسول، علماء، علماء اہل سنت، ان کی صحبت میں بیٹھنا جہاں عشق رسول بڑھے، عشق صحابہ بڑھے، عشق اولیاء بڑھے. دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشاد فرمایا علم کی مجالس. علم کی مجالس، یہ ابھی آپ جو بیٹھے ہیں نا، یہ علم کی مجلس ہے، یہ جنت کے باغ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم اس نے زن رکھتے ہیں، چن لیا کرو، اس میں سے لے لیا کرو. اور اسی طرح کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جہاں علم کی مجلس ہو، علم دین سکھایا جاتا ہو، ہماری نمازیں درست ہوتی ہو، ہماری عبادات درست ہوتی ہو، ہماری عادتیں اچھی ہوتی ہو. ہم ایسوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جہاں عادتیں ہماری خراب ہو رہی ہیں، اور ایسا ماحول ایسا ہی ہے میرے پیارے. اچھا اب دوستی نہ بھی ہو نا، اب یہ موبائل دوست بن گیا ہم لوگوں کا، ایسا دوست بن گیا کہ وہ تو دو چار گھنٹے میں جان چھوٹ جاتی تھی، اس سے تو یہ بھی نہیں چھوٹتی. اچھا خرچہ ہی کراتا ہے، یہ دیتا ویتا تو ہے کچھ نہیں، اس کا ڈیٹا ختم تو خرچہ، بجلی کھاوے تو خرچہ، چارج کرا تو خرچہ، نیا خریدو تو خرچہ، خرچہ ہی خرچہ اس کا. یہ بھی اچھا ایسا عجیب دوست بنا دیا. اب یہ اس سے مل کیا رہا ہے آپ کو؟ چلو موبائل سے آپ کی دوستی ہو گئی، موبائل کے ساتھ آپ لے کر بیٹھ گئے، موبائل دے کیا رہا ہے؟ فلمیں دے رہا ہے، گانے دے رہا ہے، بد نگاہیاں دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے یہ موبائل آپ کو؟ خرابیاں دے رہا ہے. تو اب تو پرابلم یہ ہو گیا نا، اب تو دوستیاں بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، سارے موبائل میں لگے ہوئے. پہلے ماں باپ کو شکایت کیا تھی بیٹا گھر میں نہیں آتا، اب شکایت دیا کہ بیٹا باہر نہیں جاتا، گھر میں بڑا ہوتا ہے کمرے کے اندر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے. اب موبائل میں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ تو تبھی پتا چلا جب اچانک آپ گھر میں جاؤ، پورا جھٹکا لگتا ہے. کیا بھائی مکہ مدینہ دیکھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا، حج اور عمرہ دیکھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا، قرآن پڑھ رہے تو کیوں جھٹکا لگا، عبادت کر رہے تو کیوں جھٹکا لگا، مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، بیان سن رہے تھے، کیوں جھٹکا لگا؟ جھٹکا اس لیے لگا کہ ایسا دیکھ رہے تھے جو کسی کو دکھانے جیسا نہیں تھا. باتیں سنتے ماں باپ کی، اے کمرہ بند کر کے یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کمرہ بند کر کے اب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اس کے ساتھ بھی وہی کر رہے جو ہمارے دماغ کے اندر آیا ہے. یہ اپنا علاج کرنے کی نہیں میرے پیارے اسلامی آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اکیلے بیٹھے، موبائل آپ کے ہاتھ میں. اس موبائل میں میں بھی سو بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے موبائل ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں سے حدیث پڑھ پڑھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ارشادات بزرگوں کے پڑھ پڑھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے موبائل ہے. اب موبائل میرے ہاتھ میں، میں اکیلا ہوں، نیٹ بھی میرا پورا ہے، ڈیٹا بھی زبردست، پیسے ختم ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے، دو پانچ دس گھنٹے تک چلے گا. اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، چٹاگونگ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. موبائل آپ نے اٹھایا، آپ کیا کھول کیا رہے ہیں؟ آپ کسی بھی سائٹ پر چلے گئے، کسی بھی سوشل پیج پر چلے گئے، آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، یہ آپ ہو، آپ یہ ہو، کسی اور کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ میں نے اس کے لیے آپ کو صرف ایک فارمولا دیا ہے، یہی بس نہیں ہے، مگر سمجھنے کے لیے بات کی ہے. آپ اکیلے میں ہیں، کیونکہ آپ کمرہ بند کر کے بیٹھے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر اے نادان یہ بھول جاتا ہے تو کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ، جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. ہائے، اسی وقت چیخ ماری اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی، انتقال کر گئی. تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. کوئی ہے جو اکیلا لیتا ہے، موبائل میں بیٹھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، حدیث دیکھتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، دینی اور دنیاوی فائدے کی باتیں نوٹ کرتا ہے، اگر کہیں گناہوں بری چیز آ جائے تو فوراً ہٹا دیتا ہے، بلکہ اپنے موبائل میں ہی ایسا نظام بنا لیتا ہے کہ یہ چیز اپنے موبائل میں آنی نہیں چاہیے، اپنے وائی فائی میں ایسا سسٹم انسٹال کر دیتا ہے کہ یہ چیز کھلنی نہیں چاہیے، فنا ویب سائٹ کھلنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی صحبت اچھی ہے۔ بھائی آپ اس وقت موبائل لے کر بیٹھے نا، کوئی صحبت تھوڑی ہے آپ کے ساتھ، کوئی دوست تھوڑی ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، آج نوٹ کیجئے گا رات کو جب گھر جائیں یہاں سے، تو جب موبائل کھولے تو فوراً کوشچن کیجئے گا تو کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کو فوراً جواب آئے گا کہ تو فلاں چیز دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو بولو گے تو یہ ہے، تجھے گانے سننے اچھے لگتے ہیں، تجھے ننگی عورتیں دیکھنے کا شوق ہے، تجھے ننگے مناظر دیکھنے کا شوق ہے، تجھے میوزک سننے کا شوق ہے، تجھے بے پردہ بے حیا قسم کی عورتوں کے مناظر دیکھنے کا شوق ہے، تجھے الٹے سیدھے منظر دیکھنے کا شوق ہے، تو اچھا آدمی نہیں ہے، تو برا آدمی ہے، تو گندا آدمی ہے۔ یہ اپنے آپ کو منائے سمجھائے، اگر تو اچھا آدمی ہوتا تو اس موبائل فون کے ذریعے اگر تو آن کرتا تو مکے مدینے کی باتیں دیکھتا، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا، قرآن پڑھتا، دعوت اسلامی کے آن لائن میں داخلہ لے لیتا، اور وہاں سے قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھتا، علم کی باتیں سیکھتا۔ موبائل میں تو کوئی گن نہیں نکلتی کہ یہ نکال، یہ نہیں دیکھے گا تو تمہیں شوٹ کر دیں گے، کبھی نہیں ہوتا، ٹی وی پر بھی نہیں ہوتا۔ میں موبائل کی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ٹی وی کی باتیں کرتا ہوں، آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ٹی وی خراب ہو گیا ہے، میڈیا خراب، میں بھی مانتا ہوں میڈیا میں بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کس گندے ڈرامے بنانے والے نے، کس گندی فلمیں بنانے والوں نے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو دھمکایا ہے کہ یہ دیکھو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، یہ دیکھو ورنہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، ارے گندگی ہمارے اندر ہے یار، گندا ہمارا دماغ ہو گیا ہے بھائی، کوئی اور بھی تو ہے جو وہ نہیں دیکھتے ہی ہے، سوائے مدنی چینل کے کچھ بھی نہیں چلتا اب ٹی وی کے اوپر۔ موبائل میں دعوت اسلامی کی چیزیں انہوں نے رکھی، کئی دعوت اسلامی، اسی نے دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسے عاشقان رسول ہیں جن کا دیکھنا سننا جائز اور ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے کرے، لیکن اتنی تو سمجھ آتی نہیں یار میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھی صحبت ہوگی نا تو پیارے سربھائی بچیں گے ہم، یعنی آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جو جب چاہے سانپ کو پکڑ لیتا ہے تو آپ بھی سانپ کو پکڑ لو گے، سانپ تو ڈس دے گا۔ اگر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہو گے جو سانپ کے ڈسنے سے آپ کو ڈراتا ہے اور ڈرتا ہے، تو آپ بھی سانپ سے ڈرو گے کہ نہیں یار یہ ڈس لے گا، زہر چڑھ جائے گا، جان لے لے گا۔ گناہوں کی عادت ایمان لے لیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری اصلاح فرما دے، اور جب ہم اس موبائل کے ذریعے ہوں، ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہوں، جہاں بھی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، اپنی نگاہیں جھکا لیں، نیک بن جائیں، با حیا بن جائیں، شرافت والے بن جائیں، ہم جہاں جائیں لوگ کہیں کہ یار اللہ کا نیک بندہ ہے، اچھا آدمی جا رہا ہے۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، پیسے لے لیے واپس کر دیں، مال اسباب جو بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بھی اچھی رہے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہوگی، ورنہ گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں میرے پیارے صاحب بھائیوں، یہ کبھی پیچھا آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، موت کے بعد جب شیطان آ کر اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے اس کمزور ایمان کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور نیکی ایمان کو مضبوط کرتی ہے، نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے، حیا ایمان کو مضبوط کرتی ہے، قرآن کی تلاوت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، عبادت کرے انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھے، علماء کی صحبت میں رہے۔ الحمد دعوت اسلامی آپ کو یہ سب مہیا کر رہی ہے، مگر ہمارا بھی تو دل ہو نا، ہم بھی ایسے مریض ہیں جسے یہ کام کی چیز اچھی نہیں لگتی۔ حضرت باہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا۔ کہاں مارے مارے چرسی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا یار، عالی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا، مصیبت تو یہ کہ دنیا میں ڈرگس عام ہو گیا ہے، دنیا میں جوا عام ہو گیا ہے، دنیا میں شراب عام ہو گئی ہے۔ اے میرے پیارے نادان اسلامی بھائیو، کہاں مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کوئی چرسی بنا دے گا، کوئی ہیروئنی بنا دے گا، کوئی موالی بنا دے گا، कोई चोरी करना सिखा देगा, कोई बदकारी की तरफ ले जाएगा, कोई शराबी बना देगा। ये वक्ती तौर पर मजे हैं, वक्ती तौर पर मजे, इसके बाद बुराई बुराई है। एक लड़के ने ऐसी सोबत इख्तियार की जो नशा करते थे, मैं आपको बताऊं, बहुत मुख्तसर बात है। वो नशा करते थे लड़के, वो भी नशा के आदी बन गया। एक दिन उसकी बहन ने उसको पकड़ लिया, उसने अपने नशे की आदत को बाकी रखने के लिए अपनी बहन को भी नशे का आदी बना दिया। हत्ता के वो तो निकल गया, बहन नशे की आदी हो गई, और बहन नशा करते करते, गंदे काम करते करते मर गई। वो लड़का जिंदगी भर खुद से आंख नहीं मिला पाता था कि हाय अफसोस, मैंने अपने हाथों अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। बुरी सोबत, किडनैपिंग बढ़ रही है, रॉबरी बढ़ रही है, बदकारियां बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है, इतना कुछ तबाही आ रही है दुनिया भर में, कत्लो गारतगिरी बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिचुएशन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैं बैठा चिट्टागांव में हूं, लेकिन सुनने वाले सिर्फ चिट्टागांव के लोग नहीं है। दुनिया भर का मद्दी चैनल पर कितना मुसलमान, दुनिया भर के कितने लोग सुन रहे होते हैं, हजारों इस्लामी भाई माशाल्लाह इस वक्त मैदान के अंदर जमा है, सर ही सर नजर आ रहे हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते रहेंगे, दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, आशिकाने रसूल की सोहबत में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सोच बनती रहेगी, सोहबत बना लेंगे तो सोहबत आपकी सोच भी बना देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बिजाही खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं।